धाम का जन्म हुआ और फिर कौशल्या देवी ने प्रार्थनाएं अर्पण की। देव देव नमस्तेस्तु, शंख चक्र गदाधर, परमात्मा च्युतोऽनन्तः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः। और कैसे उन्होंने समझाया अपनी प्रार्थनाओं में कि भगवान हमारे समक्ष प्रकट हैं, वैसे तो वो इस पृथ्वी के, इस प्रकृति के परे हैं, लेकिन फिर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए वो उनके समक्ष एक बालक के समान भी प्रकट होते हैं। और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया मेरे समक्ष अब एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाइए। और फिर कौशल्या की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान ने अपना बाल रूप प्रकट किया, चतुर्भुज रूप को छुपा लिया। और उन्होंने उससे पहले एक आशीर्वाद भी दिया कि जो भी इस संवाद को सुनेंगे, जो भी इस संवाद को पढ़ेंगे, पठेत या श्रुण्वावपि, चाहे पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो निश्चित है कि मरने मृत्यु के समय मत स्मृतिम, मेरी स्मृति लभेत, उनको प्राप्त होगी केवल इस संवाद को सुनने से। तो साथ ही साथ भगवान के नामकरण की भी चर्चा की थी कि कैसे वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया। राम नाम की चर्चा हुई थी, अलग अलग अर्थ राम नाम के वर्णन किए थे, चार या पांच अर्थों की चर्चा हुई थी। आप में से किसी को याद है एक दो अर्थ कोई राम नाम के? राम शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, आनंद, ठीक है। और हाँ, जो स्वयं में आनंद लेते हैं, जो आत्मा राम है, उन्हें राम कहते हैं। और हाँ, रावणस्य मरणम, हाँ, रावण का रा और मरणम का मा, तो वो राम जो हमारे हृदय में बैठे हुए रावण को मार सकते हैं। और कोई? हाँ, रति और मही, रति और मही से राम बने थे, जिसका अर्थ होता है कि इस जगत में अगर कोई आकर्षण की वस्तु है तो वो केवल श्री राम है। और अर्थ एक बताया था कि जिसमें योगी आनंद लेते हैं, रमन्ते योगिनो वन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। पद्म पुराण में बताया गया है कि राम उन्हें कहते हैं जिनमें बड़े बड़े योगी आनंद लेते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते, अनंत आनंद। तो ऐसे राम नाम की और अन्य नामों की भी चर्चा हुई, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की, और इस प्रकार उनके जन्म हुए। तो आज उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। वैसे तो वाल्मीकि मुनि ने बड़े विस्तार से बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, लेकिन अन्य पुराणों में, विशेषतः ब्रह्मांड पुराण में, उनकी बाल लीलाओं को दिया गया है। ब्रह्मांड पुराण के पहले भाग का ही हिस्सा है, अध्यात्म रामायण कहलाता है। तो उस पुराण में भगवान की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान छोटे से बालक ही थे, अभी बड़े हुए नहीं थे, बाल लीला कर रहे थे, कौशल्या को आनंद दे रहे थे। कौशल्या बहुत से व्रतों को किया करती थी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, और उन व्रतों को करते हुए बहुत से कार्य करने होते थे, भगवान की आराधना करनी होती थी, भगवान को भोग लगाना होता था। तो ऐसे समय में, एक समय जब पालने में ही थे श्री राम, तो कौशल्या देवी ने देखा कि श्री रामचंद्र पालने में सो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा भोग अर्पण करके आती हूँ भगवान को, श्री विष्णु को। तो उन्होंने जाकर स्नान आदि कर भोग तैयार किया, और फिर भोग लेकर वो गर्भगृह में गई, भगवान के स्थान पर गई, और उन्होंने भगवान को भोग अर्पण किया। अर्पण करके जब उन्होंने आंखें खोली, आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण करके जब आंखें खोली तो देखा कि श्री रामचंद्र जी वहां पर भोग स्वीकार कर रहे हैं। कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक पालने से उठकर यहाँ तक कैसे चला आया। बड़े आश्चर्य में हो गई, सोचने लगी मैं भ्रम में हूँ, भाग कर गई कमरे में पालने में देखने के लिए, तो देखा श्री राम वहां पर भी लेटे हुए हैं। कौशल्या को और आश्चर्य हुआ, पुनः भाग कर आई तो देखा वो वहां पर भी खा रहे हैं। तो कौशल्या इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाई और वो मूर्छित हो गई। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये बालक यहाँ भी है और वहाँ भी है। वैसे जब बालक छोटे होते हैं तो वैसे ही वो माँ बाप को बहुत आनंद देते हैं, बड़े होकर कष्ट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो आनंद बहुत देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई साधारण बालक माँ बाप को इतना आनंद देता है तो फिर स्वयं भगवान जिसके पुत्र बने हैं तो उन माँ बाप का आनंद कितना गुना बड़ा होगा, क्या आनंद होगा। ये तो दिव्य आनंद था, ये कोई साधारण भौतिक माता पिता के संतान का आनंद नहीं था, ये दिव्य आनंद था। और वो भी दिव्य आनंद ऐसा जो आध्यात्मिक जगत में भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो भगवान बालक नहीं है, छोटे से बालक नहीं है, पालने में नहीं खेलते हैं, वहां तो उनकी अवस्था शाश्वत है। तो कैसा आनंद रहा होगा, ये दिव्य आनंद अब कौशल्या को प्राप्त हो रहा था। तो कौशल्या मूर्छित हुई, फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा श्री रामचंद्र ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, दिव्य रूप उनको दिखलाया, केवल चतुर्भुज ही नहीं विराट रूप दिखलाया। वैसे भगवान के लक्षणों में एक लक्षण ये भी होता है कि उन्हें विराट रूप दिखलाना चाहिए। हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। आजकल भारत भूमि में विशेषतः हर गली हर नुक्कड़ पर एक भगवान प्रकट हो जाते हैं। हर रोज हम लोग सुनते हैं कि फला फला व्यक्ति भगवान हो गया, उसके घर के पास लाइन लगी है दर्शन के लिए, 5,000 रुपया उसके चरण स्पर्श करने के लिए, 10,000 रुपया उसका आलिंगन लेने के लिए, 20,000 रुपया उसके अभिषेक के लिए, और पता नहीं क्या क्या। और मूर्ख लोग ऐसे भी हैं जो देते भी हैं। तो खैर, लेकिन भगवान कौन होते हैं? पहली चीज, भगवान का शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए, अन्यथा भगवान नहीं स्वीकार कर सकते हैं। सारे अवतारों का प्रायः शास्त्रों में वर्णन है, तो शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। साथ ही साथ भगवान कोई विशेष कार्य के लिए आने चाहिए, कोई बड़ा अद्भुत अति मानवीय कार्य उन्हें करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने किया। छोटे से बालक थे, दूध पीते पीते बहुत विशाल राक्षसी का वध कर दिया। श्री रामचंद्र ने किया, समुद्र के ऊपर इतना बड़ा इतना विशाल उन्होंने सेतु बांधा। ऐसे सभी अवतारों ने किया। तो कोई अति मानवीय अति विशिष्ट कार्य के लिए वो आते हैं। रावण का वध करने के लिए आए श्री रामचंद्र, और साथ ही साथ उन्हें विश्व रूप दिखलाना चाहिए। फिर उनके चरणों पर, उनके कर कमलों पर, चरण कमलों पर चिन्ह होने चाहिए। ये सारे लक्षण हैं एक अवतार या भगवान के। लेकिन आजकल किसी को भी अवतार मान लिया जाता है, ना उनके चरण कमलों पर चिन्ह होते, कमल तो कहने ही नहीं चाहिए, ना उनके पैरों पर कोई चिन्ह होते हैं, ना हाथों पर कोई चिन्ह होते हैं, और वो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो इसीलिए श्री रामचंद्र ने भी विश्व रूप दिखलाया। कौशल्या ने देखा बड़ा विशाल रूप, जैसे अर्जुन ने देखा था असंख्य हाथ असंख्य सिर। कौशल्या बड़ी चकित हो गई, भ्रमित हो गई, फिर से मूर्छित हो गई, और फिर श्री राम ने उस रूप को छुपा लिया। तो ऐसे बड़ी लीला किया करते थे। थोड़े से बड़े हुए, जब चलने लगे तो वर्णन करते हैं, पुराणों में वर्णन है कि जब चलते तो उनके पाँव में नूपुर बांधे हुए होते थे और बहुत सुंदर आवाज किया करते, बड़ी मधुर आवाज, और अपनी बाल लीलाओं से सबको सराबोर करते। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि जब दशरथ महाराज प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते तो वो पुकारते श्री राम को कि आओ प्रसाद ले लो, लेकिन श्री राम खेलते रहते, आते नहीं। तो दशरथ को बड़ा आनंद आता। वैसे अगर पिता कोई पुत्र को बुलाता है, पुत्र नहीं आता, तो पिता थोड़ा क्रोधित हो जाता है, लेकिन यहाँ दशरथ महाराज जब रामचंद्र जी नहीं आते तो बड़े प्रसन्न हो जाते और फिर कौशल्या से कहते कि जाओ बुला कर लेकर आओ। कौशल्या भी जाती, प्रयास करती, नहीं आते, और फिर अपने मन से ही आते, जब इच्छा होती तब आते। और फिर दशरथ महाराज थोड़ा सा प्रसाद का कौर मुंह में डालते, कुछ चावल अन्न इत्यादि, और उसको खाते खाते ही भाग जाया करते खेलने के लिए फिर से रामचंद्र। तो ऐसे दशरथ बड़ा आनंद लिया करते थे। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस आनंद की जो दशरथ महाराज को केवल भगवान को ऐसे थोड़ा सा खिलाने में और उनको भागते हुए जाते देखने में होता होगा। कितना आनंद आता होगा उनको श्री रामचंद्र को देखकर। तो ऐसे वो भाग जाया करते। फिर थोड़े से और बड़े हुए, उनका अन्य संस्कार किए गए, और फिर उसके बाद उन्हें वशिष्ठ मुनि के पास भेजा गया कि जाकर वशिष्ठ मुनि उनको सिखलाएं कि कैसे धनुर्विद्या इत्यादि उन्हें सीखनी चाहिए। वैसे उससे पहले जब घर में रहते थे तो जैसे हमने पिछली बार भी वर्णन किया था कि कभी कभी मटके इत्यादि फोड़ दिया करते थे। एक समय ऐसे हुआ था कि जब श्री रामचंद्र जी को बहुत भूख लगी थी और वो कौशल्या देवी के पास आए, और कौशल्या देवी उस समय अपने व्रत इत्यादि में लगी थी, पूजा इत्यादि में लगी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर उस समय क्रोध में आकर उन्होंने वहाँ से वो रसोई घर में जाकर सारे जितने मटके इत्यादि सामान रखा था सब तोड़ डाला। और वहाँ का जो रसोईया था वो बड़ा घबरा गया रामचंद्र जी का ये रूप देखकर, भागा भागा कौशल्या के पास गया, कौशल्या को बुलाया, और कौशल्या ने जब सुना कि रामचंद्र जी रसोई घर में सारे मटके, सारे जो बर्तन इत्यादि हैं तोड़ रहे हैं, तो कौशल्या का आनंद बहुत बढ़ गया। कौशल्या को बहुत आनंद आया ये सुनकर कि रामचंद्र जी ये लीला कर रहे, भागती हुई आई देखने के लिए। लेकिन जब वो आई तो ये सब भाग गए, चारों थे वहां, फिर भी पकड़ लिया कौशल्या ने, हाँ लेकिन मार नहीं पाई। जैसे ही पकड़ा, रामचंद्र जी का मुख केवल देखती ही रही, इतना आकर्षक वो मुख था श्री रामचंद्र जी का कि कौशल्या केवल देखती ही रही, वो कुछ कर नहीं पाई। हाँ लेकिन रामचंद्र जी रोने लग गए, वो सोचने लगे अब तो बहुत मार पड़ेगी, अब तो कौशल्या ने पकड़ लिया, लेकिन कौशल्या ने कुछ किया नहीं। तो फिर ऐसे वो आगे जब वशिष्ठ मुनि के यहाँ गए तो पहले दिन प्रथा ये होती है कि राजा भी बैठते हैं और अपने पुत्रों को धनुर्विद्या प्रारंभ करते हुए वो स्वयं देखते हैं। ये एक संस्कार भी है और प्रथा भी है कि राजा बैठा करते हैं और जो गुरु होते हैं, जो कुल गुरु या मुनि इत्यादि, वो फिर प्रारंभ कराते हैं शिक्षा को। तो लेकिन इस समय वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज से कहा कि महाराज आप चले जाइए यहाँ से, हम इनको धनुर्विद्या प्रारंभ कराएंगे लेकिन आप मत बैठिए। तो दशरथ महाराज ने कहा अरे ये तो प्रथा नहीं है, नियम नहीं है, प्रथा तो यही है कि जब धनुर्विद्या का प्रारंभ होता है राजकुमारों का तो राजा बैठकर देखते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि महाराज प्रथा तो ये भी नहीं है कि खीर से पुत्र उत्पन्न होते हैं, ये भी तो नहीं है, तो इसीलिए इस समय आप चले जाइए। तो दशरथ महाराज ने स्वीकार किया, वे चले गए। दशरथ महाराज को भेजने का एक कारण ये था कि वशिष्ठ मुनि भगवान की आराधना करना चाहते थे। वशिष्ठ मुनि जानते थे ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम सत्य है। तो इसीलिए जब वे चले गए और चारों भाई बैठे थे तो वशिष्ठ मुनि ने उठकर उन सब की प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया उन्हें। अगर दशरथ महाराज ये देख लेते तो कहते कि क्या कर रहे हैं, गुरु आप हैं या ये हैं? लेकिन दशरथ महाराज नहीं थे, वशिष्ठ मुनि ने की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की कि आप जब भी प्रकट होते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं, किसी एक ऋषि को चुनते हैं, अपना गुरु बनाते हैं और फिर उससे विद्या सीखते हैं, वो विद्या जो आप ही प्रदान करते हैं, जिसके स्रोत आप ही हैं, सारी विद्या तो आपसे ही आती है, फिर आपको विद्या कौन सिखा सकता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे चुना है। और फिर उन्होंने विद्या सिखाई। सिखाना क्या था, श्री रामचंद्र तो जानते ही थे, और इसका प्रमाण ये था कि अभी उनकी धनुर्विद्या प्रारंभ नहीं हुई थी। एक समय वशिष्ठ मुनि कहीं गए हुए थे, राम और लक्ष्मण बैठे थे, तो सामने से एक छोटी बालिका जा रही थी जिसकी नाक में उन्होंने नथनी पहनी हुई थी, बहुत बड़ा सा ऐसे गोलाकार नथनी। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो लोग नहीं पहनते, पहले बहुत बड़े बड़े ऐसे पहने जाते थे, माताएं नाक में पहना करती थी, आज भी गांवों में कहीं कहीं पहनते हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा वो गोला था, नथनी थी। तो राम और लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने जब देखा तो लक्ष्मण हंसने लगे। रामचंद्र जी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनकी नाक की जो नथनी है वो बहुत बड़ी है, और लक्ष्मण ने कहा मैं उसे छोटा कर देता हूँ। इन्होंने इधर उधर देखा, वशिष्ठ मुनि नहीं थे, आसपास देखा तो तीर पड़ा था, तो लक्ष्मण जी ने तीर लिया और चला दिया, और ऐसा तीर चलाया कि वो गया और उसकी नथनी को स्पर्श किया और नथनी एकदम छोटी हो गई। लेकिन थोड़ा तीर तेज चलाया था, नथनी ज़्यादा ही छोटी हो गई, वो इतनी छोटी हो गई कि उसकी सांस बंद हो गई यहाँ से। तो लड़की घबरा गई, छोटी सी बालिका थी, उसने देखा रे क्या हुआ, एकदम नथनी छोटी, सांस बंद हो गई, तो वो चिल्लाने लगी। अब जब चिल्लाने लगी तो लक्ष्मण घबरा गए कि अरे ये तो वशिष्ठ मुनि को पता चल जाएगा। तो रामचंद्र जी ने कहा चिंता नहीं करो, उन्होंने और एक तीर चलाया तो नथनी फिर से थोड़ी बड़ी हो गई। तो लड़की घबरा गई कि ये क्या भूत आ गया कि क्या हुआ है। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गए, कहने लगे चिंता नहीं करो, ये तो लक्ष्मण ने तीर चलाया था तो नथनी छोटी हो गई थी, लेकिन अब मैंने तीर चलाकर उसको बड़ा कर दिया। तो लड़की को विश्वास नहीं हुआ ऐसा कोई होता है, क्योंकि तीर ऐसा चला था कि उसकी नाक को स्पर्श भी नहीं किया था लेकिन नथनी को छोटा कर दिया था। तो उसने कहा ऐसा तो नहीं होता। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया, आप तो जानते हैं लक्ष्मण शेषनाग हैं, हमेशा फुंकारते रहते हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया कि अरे ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है विश्वास नहीं, कहा नहीं, तो उन्होंने और एक तीर चला दिया और वो तीर उसकी नथनी को लेकर हवा में उड़ गया एकदम, और वो बेचारी पीछे पीछे भागने लगी, हाय मेरी नथनी, हाय मेरी नथनी। और फिर श्री रामचंद्र जी घबरा गए कि वशिष्ठ मुनि को पता चल जाएगा, तो उन्होंने और एक तीर चलाया और फिर से वो वापस नथनी उनके नाक में आ गई। वैसे तो ये प्रसंग बड़ा हास्यपद पता चलता है लगता है, लेकिन इसमें भगवान की विलक्षणता पता चलती है कि अभी चलाना नहीं सीखा था तीर, लेकिन बड़े आराम से ऐसे तीर चला रहे थे। तो ऐसे कई बाल लीलाएं भगवान ने की, और फिर वो थोड़े बड़े हुए, करीब 16 साल के हुए होंगे, अभी 16 पूरा नहीं हुआ था, कम ही थे। और ऐसे समय में अब विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ, तो अब इस लीला का वर्णन आज करेंगे। विश्वामित्र मुनि के आगमन की लीला हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इसके संदेश को अभी तक समझे नहीं हैं, आज प्रयास करेंगे। विश्वामित्र मुनि, इनका इतिहास हम आगे चर्चा करेंगे, रामायण में इनके इतिहास की चर्चा हुई है, ये कौन है, कैसे इन्होंने युद्ध किया, कैसे ये राजा थे, फिर राजा से कैसे ब्राह्मण बने, कैसे तपस्या की, ये सब चर्चा बड़े विस्तार से तब होगी जब रामचंद्र जी मिथिला पहुंच जाएंगे, अभी तो नहीं पहुंचे हैं। तो उस समय बड़े विस्तार से हम इनकी चर्चा करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि द्वार पर आए और दशरथ महाराज को संदेश पहुंचा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। अब केवल ये संदेश सुनकर ही दशरथ महाराज बड़े घबरा गए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि तो कोई साधारण ऋषि नहीं है। साधारणतः उनके क्रोध के बारे में कहा जाता है, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। जैसे जब उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिल रही थी, तब भी बड़े क्रोधित हुए थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि ही बनना है और कुछ नहीं। एक समय ऐसा भी था कि वो बड़ी तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठे, और ऊपर से एक पक्षी ने उनके ऊपर कुछ डाल दिया, मल त्याग कर दिया, तो उसको गुस्से से देखा और वो जल गया पक्षी। लेकिन उस पक्षी को जलाने में उनका 50 साल का तपोबल चला गया। ऐसा बताते हैं कि जब कोई तपस्या करते हैं तो क्रोध से, काम से, लोभ से उनकी तपस्या का बल समाप्त हो जाता है, फिर तपस्या का बल नहीं रहता। इसीलिए एक बार उन्होंने और भी क्रोध किया था, जब रंभा उनको आकर्षित करने आई थी, वो तपस्या कर रहे थे तो क्रोध कर दिया था, वो पत्थर हो गई थी रंभा। तो ऐसे क्रोध वैसे ये नाश का ही कारण बनता है। जो भी व्यक्ति तपस्या करना चाहते हैं, वैसे मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही है, तो उन्हें क्रोध को त्यागना चाहिए। क्रोध से बहुत नाश होता है। क्रोध में व्यक्ति अपनी बुद्धि खो बैठता है, विवेक खो बैठता है, क्या सही है क्या गलत है जान नहीं पाता, और फिर ऐसे कार्य कर देता है जिसके लिए आगे पछताना पड़ता है। बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं इतिहास में, शास्त्र में, आज के समाज में, आधुनिक समाज में, कि जहां केवल क्रोध के कारण बहुत से नाश हुए हैं। व्यक्ति क्रोध कर देता है और फिर क्रोध में गलत कार्य कर बैठता है, क्योंकि क्रोध करते हुए हम आगे उसके भविष्य की या उसके फल की चिंता नहीं कर पाते हैं कि क्रोध में किए गए कार्य से क्या फल होगा, इसका क्या आगे परिणाम होगा, हम सोच नहीं पाते। वैसे मनुष्य जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले इस एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा। अगर हम ये चीज अपने जीवन में सदैव उपयोग में लाएं, तो निश्चित है कृष्ण भक्ति में बड़े आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचें कि क्या इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस यही कृष्ण भावनामृत है। हम बड़ी जल्दी शुद्ध भक्त बन सकते हैं अगर हम अपने हर कार्य के पहले ये सोचें कि क्या इससे श्री कृष्ण भगवान के भक्त वैष्णव प्रसन्न होंगे, अगर नहीं तो फिर इस कार्य को नहीं करना। लेकिन क्रोध में हम ये बात नहीं सोच पाते। हाँ, वैसे तो हम लोग बिना क्रोध के भी ये बात नहीं सोच पाते कि हर चीज श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन अगर हमें भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें निश्चित ये करना चाहिए। देखिए, हम सब का जीवन अनिश्चित है। एक जीवन ही ऐसा है कि कभी भी समाप्त हो सकता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कब हम लोग मर जाएंगे, कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल वृद्ध व्यक्ति ही मरेंगे। तो क्रोध की चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से क्रोध से, अगर हम इस बात को जान लें भक्ति में कि हम सब कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, तो निश्चित है हमारे जीवन की कोई निश्चितता नहीं है। कभी भी प्राण त्याग सकते हैं, किसी भी अवस्था में त्याग सकते हैं। तो फिर ऐसी चीजों को क्यों करना जो कृष्ण और हमारे बीच में आए। अभी हम 2 दिन पहले एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो वो हमें कह रहे थे कि, हमने उनसे पूछा आप जप करते हैं, बोले हाँ काफ़ी समय से करते हैं, लेकिन हमें उनके गले में कंठी दिखाई नहीं दी। तो हमने पूछा आप कंठी पहनते नहीं, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो मैं कुछ नहीं करता। हमने कहा शराब पीते हैं, बोले नहीं। कहा जुआ खेलते हैं, बोले नहीं। तो फिर क्या है, बोले मांस खाना नहीं छूट रहा तो इसलिए नहीं पहन रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि आज मंदिर का उद्घाटन है, हम लोग कारवार में थे 2 दिन पहले, तो हमने कहा आज मंदिर का उद्घाटन है तो भगवान को एक उपहार दे दीजिए आज। तो क्या उपहार आप बोलिए वो देंगे। हमने कहा ये उपहार दे दीजिए, कहिए आज से मांसाहार नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे मांसाहार। तो चुप हो गए, बोल नहीं पाए कुछ। तो हमने उनसे यही कहा कि भगवान और आपके बीच में जरा से मांस के टुकड़े को क्यों लेकर आते हैं। सामने भगवान है, यहाँ आप हैं, बीच में बस एक ही चीज है, मांस का टुकड़ा, हटा दीजिए उसको। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को, क्रोध इत्यादि को भगवान और हमारे बीच में लाकर हमें समय बड़ा नहीं करना चाहिए अपना इस पृथ्वी पर। बहुत साल, बहुत योनियों में, बहुत जन्म हम जी चुके हैं। अब एक अवसर मिला है आचार्यों की कृपा से। जय श्री राधा गोकुलानंद की। तो ऐसे हमारा जो जीवन है ये बहुत थोड़ा है और कभी भी समाप्त हो सकता है। तो भगवान और हमारे बीच में अगर कोई भी चीज़ हम लाते हैं उससे केवल हमारा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना समय हमारे पास है। हो सकता है 10 साल हों, 5 साल हों, 20 साल हों, हम तो ऐसे सोचते हैं। कोई कोई कहते हैं प्रभु जी उम्र 60 साल हो गई, अब 5-10 साल 20 साल और बाकी हैं। ऐसा नहीं है। जिसकी उम्र 30 साल है निश्चित नहीं है कि उसको 40-50 साल हैं भक्ति करने के लिए, नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी समय है ऐसी कोई चीज ना करें जो हमारे और भगवान के बीच में आए। तो विश्वामित्र मुनि आए और दशरथ महाराज बड़े प्रसन्नता से उनको स्वागत करने गए। वैसे थोड़ा सा संशय था, भय था हृदय में कि विश्वामित्र मुनि क्यों आए हैं, क्योंकि ऐसे मुनि अचानक किसी के घर नहीं जाए जाते। भक्त, अगर भक्त या महान ऋषि मुनि कोई घर पर आ जाए तो अपना भाग्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अचानक नहीं जाते, बुलाने पर भी नहीं आते। विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक आ गए। तो दशरथ महाराज को बड़ा संशय भी था, लेकिन आए हैं इसीलिए बड़ा स्वागत करने गए। विश्वामित्र मुनि का स्वागत किया। विश्वामित्र मुनि ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज आपका राज्य में सब ठीक चल रहा है? आपके जो आसपास के राजा हैं, जो शत्रु राजा आपके हैं, वो आपके नियंत्रण में तो हैं? आपके ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहे? राज्य में सारी व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है? आपका यज्ञ इत्यादि ठीक चल रहा है? तो राजा ने कहा, दशरथ ने, हाँ ऋषि आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। और फिर राजा ने उनका गुणगान करना प्रारंभ किया। राजा ने कहा कि आज आप मेरे घर में आए हैं तो जैसे एक मरणासन व्यक्ति को जो मरने वाला है अमृत प्राप्त हो जाए, या फिर जैसे ऐसे प्रदेश में जहां पानी नहीं है वर्षा हो जाए, या फिर ऐसे माता पिता जिनको संतान नहीं है उनको संतान हो जाए, जो सुख उनको प्राप्त होता है आज वो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। या फिर कभी कभी किसी व्यक्ति की कोई चीज खो जाती है, कोई बड़ी प्रिय वस्तु, और पुनः प्राप्त हो जाए तो जो आनंद उसको होता है वो आनंद मुझे हो रहा है। अर्थात वो इन तुलनात्मक दृष्टियों से बता रहे थे कि मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मरने वाला है और अचानक उसे कहा जाता है कि नहीं बस ये खा लो, ये तुम्हारे लिए अमृत के समान है, तुम मरोगे नहीं और 50 साल जियोगे, कितना खुश हो जाएगा। भक्त होगा तो शायद नहीं होगा खुश, ज़रा अच्छा होता मर जाता, कहाँ फिर से फंसा दिया। लेकिन भौतिकवादी लोग तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर ऐसे, और या फिर जहाँ कहीं वर्षा नहीं होती वहाँ वर्षा होने लगे तो प्रया कल्पना कीजिए वहाँ के लोग कितने प्रसन्न होंगे, आनंद में हो जाएंगे। या फिर किसी माता पिता के संतान ही नहीं हो रही, जैसे दशरथ महाराज के 60,000 वर्ष हो गए संतान ही नहीं हुई, तो क्या आनंद होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हुआ है आपके केवल आगमन से, और आज जो मेरा घर है ये तीर्थ के समान हो गया। अब मेरा घर घर नहीं रहा, तीर्थ हो गया। महाभारत में भी ऐसा वर्णन है कि वहां पर कहा जाता है जब बड़े बड़े सन्यासी कोई ऋषि घर में आते हैं, भागवत में भी वर्णन है, कहा जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सारे तीर्थ वहां उपस्थित हो गए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भक्तों के आने से घर तीर्थ हो जाता है। तो दशरथ महाराज ने कहा आज मेरा घर तीर्थ हो गया, आप कुछ मांगिए, आप किस कारण से यहां आए हैं, मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं तो संशय नहीं रखिएगा हृदय में कि वो प्राप्त होगी ना या नहीं होगी, वो निश्चित प्राप्त होगी आपको। केवल आप कहिए मुझसे कि आप किस कारण से यहां पर आए हैं, क्या कारण है आपके आने का। तो उस समय विश्वामित्र मुनि उन्हें बताते हैं कि दशरथ महाराज मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ करते समय कुछ राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। जब पूर्ण होने वाला होता है बस तब आकर सब गंदी चीजें उस पर डाल देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, और जिसके कारण मैं यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और मेरे अंदर शक्ति है, मैं उन्हें श्राप भी दे सकता हूं, क्रोध भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, मैं श्राप दे नहीं सकता। जैसे हमने पहले भी बताया कि श्राप दे देने से, क्रोध कर देने से उनकी तपस्या का बल समाप्त हो जाएगा, वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ महाराज ने सुना तो दशरथ महाराज कहने लगे कि मेरा पुत्र तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, कोई युद्ध देखा नहीं, करना तो दूर की बात है, उसने युद्ध देखा भी नहीं है कि क्या होता है। आपको राक्षसों को मारना है ना, मेरी सेना ले जाइए, मैं चलता हूं साथ में, मैं युद्ध करूंगा, और अगर बहुत बड़े राक्षस है तो मेरी सारी सेना जाएगी। आप बताइए कौन है वो लोग। राम को नहीं, राम तो अभी बच्चा है, मैं चलूंगा आपके साथ, बताइए कौन है। तो विश्वामित्र ने बताया, विश्वामित्र ने कहा कि रावण नाम का एक बड़ा राक्षस है, विश्रवा का पुत्र है, कुबेर का भाई है, बड़ा शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत शक्तिशाली हो गया है, और वो तो ऐसी छोटी मोटी चीजें करने नहीं आता, विघ्न डालने, लेकिन उसने मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षसों को भेजा हुआ है वहां पर, वो लोग बड़ा उत्पात मचा रहे हैं। तो जब दशरथ महाराज ने रावण का नाम सुना तो दशरथ महाराज ने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुनि से कि हे मुनि, ये रावण से तो बड़े बड़े देवता नहीं लड़ पाते, मैं क्या लड़ूंगा उनसे, मैं नहीं जाऊंगा उससे युद्ध करने, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, रावण का सामना मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए न मेरी सेना जाएगी न मैं जाऊंगा, और राम तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, वो तो बच्चा है। तो उस समय जब राम को ले जाने की बात कही थी तो विश्वामित्र मुनि ने एक बात कही थी उनसे कि आप राम को भेजिए, क्योंकि मैं जानता हूं राम कौन है। एक बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने कहा, वो कहते हैं, अहम वेद्य महात्मानं रामं सत्य प्रकाशमं वशिष्ठोपि महातेज ये चे मे तपसी स्थितः। वो कहते हैं अहम वेद्य, मैं जानता हूं, किसको, श्री राम को, अहम वेद्य महात्मानं रामं प्रकाश, मैं जो राम नाम के महात्मा है इनको जानता हूं, ये कौन है। अभी देखिए इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं, वो अपने आने का उद्देश्य बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि एक राजा के पुत्र को लेकर जाऊं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, मैं जानता हूं श्री राम कौन है, अहम वेद्य महात्मानं रामं च प्रकाशमं, राम का क्या महात्म्य है, राम की क्या शक्ति है, राम कौन है मैं जानता हूं, और केवल मैं ही नहीं वशिष्ठोपि महातेज, वशिष्ठ मुनि भी जानते हैं ये कौन है। क्यों बता रहे हैं कि मैं जानता हूं आप मेरे से नहीं मानने वाले हैं, वशिष्ठ मुनि बताएंगे आपको कि ये कौन है, तो वशिष्ठोपी महातेज, वशिष्ठ भी जानते हैं ये कौन है। और इतना ही नहीं, जो भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, वो सब भी जानते हैं। ये चेमे तपस्वी, जो भी तपस्वी हैं, वो भी जानते हैं कि ये कौन है। तो देखिए, केवल एक ही श्लोक बोलने से या एक ही वाक्य बोलने से उन्होंने श्री राम की भगवत्ता को प्रस्तुत किया कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, मैं, वशिष्ठ मुनि इत्यादि सब जानते हैं कि ये कौन है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। तो वशिष्ठ मुनि आगे चलकर समझाते हैं, जब दशरथ महाराज ने मना किया, विश्वामित्र थोड़ा क्रोध करने लगे कि आपने तो वचन दिया है, आपको पूरा करना चाहिए, आपने ही कहा था निसंशय, हृदय में संशय मत रखिए कि आपका वचन पूरा होगा या नहीं, तो फिर अब आप क्यों नहीं उसको पूरा कर रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने समझाया दशरथ महाराज को। जब वाल्मीकि मुनि ने तो केवल इतना वर्णन किया कि वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि देखिए, विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विश्वामित्र सारे अस्त्र शस्त्रों को जानते हैं। एक इतिहास का वर्णन किया वशिष्ठ मुनि ने कि पूर्व में कश्यप मुनि की दो पत्नियों ने अस्त्रों को जन्म दिया था, और वो अस्त्र अलग अलग प्रकार के अस्त्र थे जो राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट हुए थे। जया और सुप्रभा नाम की पत्नियों ने इन दो बहुत बलशाली अस्त्रों को प्रकट कराया था पूर्व में, और वो सारे अस्त्रों की कला को विश्वामित्र मुनि जानते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये मार नहीं सकते हैं। तो जया और सुप्रभा ये दक्ष की दो पुत्रियां थीं। तो दक्ष पुत्रियों ने इनको प्रकट किया था, और उन सारे अस्त्रों को जिन्हें बड़े बड़े देवता नहीं जानते, उन्हें विश्वामित्र मुनि जानते हैं। तो इसलिए अकेले ही सक्षम है उनको मारने के लिए। ये तो केवल आपके पुत्र का गुणगान बढ़ाना चाहते हैं, ताकि सारे जगत में आपके पुत्र का गुणगान हो, और ये उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि विश्वामित्र मुनि सक्षम नहीं है, राम को कुछ नहीं होगा, विश्वामित्र मुनि बहुत अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। ऐसा वर्णन वाल्मीकि ने किया, और पद्म पुराण में भी वर्णन हुआ, पद्म पुराण और अन्य स्थानों में वर्णन है कि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें समझाया कि ये कौन है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है श्री राम, अरे ये तो भगवान हैं। पूर्व जन्म में आपने दशरथ महाराज प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, भगवान से वर मांगा था कि मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होइए, और अब वो ही भगवान प्रकट हुए हैं। और विश्वामित्र मुनि कोई अपने यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं आए हैं, विश्वामित्र मुनि के आने का एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? वो कहने लगे कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, श्री राम की अंतरंगा शक्ति जानकी देवी प्रकट हो चुकी है मिथिला में, और विश्वामित्र मुनि के आने का एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? वो ये है कि श्री राम और उनकी अंतरंगा शक्ति दोनों का मिलन कराना, इसलिए वो आए हैं। और वो जानते हैं कि ये कौन है, तभी तो यहां आए हैं, नहीं तो अन्य स्थान पर जाते। दरअसल वो श्री हरि के दर्शन करना चाहते थे, उनकी लीला का रस को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए आए। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि जिस समय विश्वामित्र मुनि आए, उस समय दशरथ महाराज अपने मंत्रियों से, ब्राह्मणों से राम के विवाह की चर्चा कर रहे थे कि अब ये चारों बड़े हो रहे हैं, इनका विवाह कैसे होना चाहिए, और उसी समय विश्वामित्र मुनि आए। तो वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि इनके आने का उद्देश्य केवल इतना है कि वो सीता और राम का मिलन कराना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो भगवान की लीलाएं होती हैं, इनका गूढ़ कारण होता है। विश्वामित्र मुनि को बुलाया भगवान श्री राम ने, सोचा कि अब विवाह कर लेना चाहिए, तो विवाह करना है तो कैसे करें, अब पिताजी से कैसे कहें कि जानकी वहां पर आ गई है, आप जाओ कुछ बात करो, कह नहीं सकते। ये तो वो समय नहीं था, कलयुग तो नहीं था कि जहां कह दें या खुद जाके विवाह करके आ जाएं। तो फिर विश्वामित्र मुनि को बुलाया, उनके हृदय में प्रेरणा दी कि आओ और मुझे लेके जाओ। तो फिर विश्वामित्र मुनि आए। तो ये कारण था विश्वामित्र मुनि के आने का। तो ऐसे वशिष्ठ मुनि ने समझाया। अब इस प्रसंग में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को हम सीख सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात जो इस प्रसंग से हम सीखते हैं कि कभी कभी हम आगे आने वाली अच्छी चीजों को देख नहीं पाते। अभी की कुछ चीजों को देखकर हम आगे का अनुमान नहीं लगा पाते। जैसे आगे की जो अच्छी चीज है वो हमें अभी बुरी लगती है। जैसे विश्वामित्र मुनि बड़े बुरे लग रहे थे उस समय दशरथ महाराज को कि तो क्या कह रहे हैं, राम को ले जाएंगे, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन वो भूल रहे थे कि राम को ले जाने से आगे भाग्य की लक्ष्मी सीता देवी आने वाली हैं, आगे अच्छा होने वाला है, राम का विवाह होने वाला है, इस बात को नहीं देख पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्तमान की चीजों को बुरा मान लेते हैं, लेकिन वही वर्तमान की चीजें हमारे लिए आगे चलकर अच्छी होती हैं। तो इसीलिए जैसे हमने बताया कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर कार्य करने से पहले उसके परिणाम पर हमें चर्चा या विचार कर लेना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात हम इससे सीख सकते हैं। और एक बात इससे सीखते हैं कि दशरथ महाराज अपना प्रेम दर्शा रहे थे श्री राम के प्रति, या विश्वामित्र के मुनि के प्रति भी उन्होंने बहुत आदर प्रेम दिखलाया। लेकिन हमारे प्रेम की परीक्षा कब होती है? सच्चे प्रेम की परीक्षा निस्वार्थ सेवा से होती है। स्वार्थ नहीं हो, यहां दशरथ महाराज का स्वार्थ था, मुझे राम से आसक्ति है, मुझे राम से प्रेम है, तो मेरे प्रेम के लिए अगर राक्षस विश्वामित्र मुनि को विध्वंस भी कर दे तो ठीक है, लेकिन मुझे प्रेम है तो ये स्वार्थ है। लेकिन असली प्रेम क्या है? निस्वार्थ सेवा। हमारे प्रेम की परीक्षा है कि कैसे हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या हम उनकी निस्वार्थ सेवा करते हैं? या भगवान ही क्यों, इस जगत में भी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। ये सही प्रेम है। जहां स्वार्थ है प्रेम में, वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो काम है, वो लोभ है, प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ सेवा से प्रकट होता है। तो हमारे प्रेम की परीक्षा होती है। अगर हमें अपने प्रेम की परीक्षा करनी है कि हम सही में श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं या नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं, तो हमें देखना चाहिए क्या हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, क्या हमारी सेवा में स्वार्थ है, क्या हम सेवा किसी लाभ की आकांक्षा से कर रहे हैं, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, कुछ धन कमाने के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं सेवा, कोई बहुत बड़ा पद पाने के लिए कर रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं, यह निस्वार्थ है कि ठीक है जो भी कृष्ण की सेवा में आए, मान अपमान सुविधा असुविधा सब स्वीकार है, कोई स्वार्थ नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस प्रसंग से हम प्राप्त करते हैं कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। अपने स्वार्थ को जब हम बीच में ले आते हैं तो वो प्रेम में दूषण आ जाता है, वो सच्चा प्रेम नहीं रहता। और इस जगत के सारे प्रेम ऐसे ही हैं, इसीलिए वो प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, और वो भी निस्वार्थ भावना से, जहां कोई स्वार्थ ना हो। अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति। अहेतुकी, कोई हेतु नहीं है हमारा। हम भगवान की भक्ति भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ प्राप्त होगा। हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न कुछ नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये भक्त का भाव, ये निस्वार्थ भावना। भगवान हमें जहां रखें, स्वर्गे वा निरये, स्वर्ग में रखें, नरक में रखें, धाम में रखें, इस भौतिक जगत में रखें, कोई चिंता नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये परीक्षा है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं हम भक्ति में आगे बढ़े या नहीं बढ़े, हमें कैसे पता चलेगा, ये परीक्षा है। क्योंकि आप किस भाव से सेवा कर रहे हो ये केवल आप जानते हो। तो आपको परीक्षा करनी चाहिए अपने अंदर, मैं क्या भाव में सेवा कर रहा हूं, निस्वार्थ है मेरी सेवा। मैं सेवा करता हूं उसमें कोई बाधाएं आ जाती हैं, मैं सेवा छोड़ देता हूं। मैं सेवा करता हूं उसमें मुझे सुविधा नहीं मिलती, मैं सेवा छोड़ देता हूं। मैं सेवा करता हूं उसमें थोड़ा अपमान आ जाता है, कोई लांछन लगा देता है, मैं सेवा छोड़ देता हूं। ये निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ सेवा, जब तक सेवक का अवसर मिले सेवा करते रहना, कोई भावना कोई कामना नहीं, ये सच्चा प्रेम है। वैसे भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, कृष्ण प्रेम, यही भक्ति है। और इसकी परीक्षा हमारे निस्वार्थ सेवा से होती है। तो ये भावना हमें यहाँ इस प्रसंग में दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी हम उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते जो व्यक्ति हमें हमारे गंतव्य तक या हमारे जीवन के उद्देश्य तक हमें पहुंचा सकता है। जैसे विश्वामित्र मुनि आए और दशरथ महाराज ने उन्हें गलत समझा कि ये तो मेरे पुत्र को छीनने आए हैं मुझसे, ये क्या गलत बात कह रहे हैं, हम सब मर जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि विश्वामित्र मुनि ये तो सीता देवी से मिलन के लिए लेकर जा रहे हैं, कितना बड़ा आगे प्रसंग होने वाला है। तो इसलिए वो निमित्त बने तो उस निमित्त को गलत समझ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए, प्रचार किए, कई लोगों ने गलत समझा कि ये क्या करने आए हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लोगों ने उन्हें गलत समझा, बाहर के धर्म की बात तो अलग है, सन्यासी हैं, समुद्र पार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कैसे श्रील प्रभुपाद बाहर के ऐसे लोगों को जिनको ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ उनको ब्राह्मण बना दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज देखिए सारे जगत में प्रचार हो रहा है। तो उस समय प्रभुपाद को गलत समझा लोगों ने, लेकिन आज हम लोग फल देख रहे हैं। अगर प्रभुपाद ने नहीं किया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, हम लोग भी कहीं किसी शराब खाने में शराब पी रहे होते, कहीं मांस खा रहे होते, कहीं गलत कार्य कर रहे होते। लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठकर रामायण सुन रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा है। लेकिन उस समय लोगों ने गलत समझा, तो ऐसा होता है। तो ये भी हम इस प्रसंग से सीख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग में आती है कि कभी कभी जैसे विश्वामित्र मुनि एक गुरु की स्थिति में है, सन्यासी या मुनि एक गुरु की स्थिति में होते, दशरथ महाराज शिष्य की, तो कभी कभी शिष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता अपनी आसक्ति के कारण, ये भक्ति नहीं है, ये नियम नहीं है। हमें गुरु के आदेशों का शतशः पालन करना चाहिए, अपनी आसक्तियों को त्यागना चाहिए। दशरथ महाराज त्याग नहीं सके श्री राम से आसक्ति को, इसीलिए उनके निर्देश को उन्होंने ठुकराना चाहा, उन्होंने सोचा कि मुझे पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो आध्यात्मिक गुरु के उपदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, भले ही वो कड़वे लगें, भले ही हमें कठिन लगें, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि ये तो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु के आदेश हैं तो उन्हें पालन कर लेना चाहिए और उससे ही लाभ होता है। जैसे यहाँ पर दशरथ महाराज को लग रहा था कि ये जो उपदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, इससे तो मेरा लाभ भी नहीं होगा, रामचंद्र जी का भी लाभ नहीं होगा, किसी का लाभ नहीं होगा। लेकिन उनको गलत समझकर, तो ऐसा नहीं, एक शिष्य को ये भाव नहीं होना चाहिए। शिष्य का भाव होना चाहिए अनासक्त होकर अपने गुरु से उसको आदेश स्वीकार करने चाहिए और उन आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। विश्वामित्र मुनि तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, दशरथ महाराज को जानना चाहिए था, ये मनन करना चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति अगर मुझे कुछ निर्देश दे रहे हैं तो जरूर इसमें कोई महत्वपूर्ण बात होगी। क्या दशरथ महाराज ये भूल गए कि ऋषि मुनि, ऐसे महान मुनि, ये अपना जीवन देते हैं दूसरों के अच्छे के लिए, भले के लिए, अपने जीवन में कष्ट लेते हैं, अपने जीवन में तपस्या करते हैं ताकि दूसरों को सुविधा मिल सके। जैसे नैमिषारण्य में हजारों हजारों ऋषि आए, यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, किस लिए? उनका उद्देश्य एक ही था कि कलयुग में, आने वाले युग में, कलयुग के समय लोगों का उद्धार कैसे होगा। अन्य लोगों के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, तो क्या दशरथ महाराज ये भूल गए कि अगर ये ऋषि मेरे घर पर आकर ऐसी बातों को कह रहे हैं तो जरूर इसमें कोई अच्छी बात छुपी होगी। ये तो कोई गलत व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई डाकू नहीं है, ये तो कोई चोर नहीं है, ये तो महान ऋषि हैं, और ऐसे ऋषियों के मुख से कभी गलत बात आ ही नहीं सकती। हमें ये जानना चाहिए कि जहां भी शुद्धता होती है वहां से शुद्ध चीजें ही आती हैं। तपस्या करने से शुद्धता प्रकट होती है और फिर उस शुद्ध मन से अशुद्ध बातें प्रकट नहीं होती। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्तर के व्यक्ति कोई चीजें कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो निश्चित हमारे भले के लिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये एक शिष्य का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। शिष्य कौन है? शिष्य वो है जो अपने आप को गुरु को बेच देता है, उसे शिष्य कहते हैं। अब फिर बिकने के बाद हमारी क्या स्वतंत्रता है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये गुरु का आदेश हम पालन नहीं करेंगे? हाँ, गुरु को पहले जांच परख कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या वो गुरु प्रामाणिक है या नहीं, परंपरा में आता है या नहीं। एक प्रामाणिक परंपरा में है, शास्त्रों के सार को जानता है, शास्त्रों के संदेश को एक डाकिये की तरह हम तक पहुंचा रहा है, जैसा आचार्यों ने कहा उसी को वो हम तक ला रहा है, क्या वो है या नहीं, आचरण करता है या नहीं, ये सब जांच परख कर लेना चाहिए। किसी भी ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए जो ये सब चीजों में दक्ष ना हो, जो शास्त्रों के सार को नहीं जानता हो, जो परंपरा में ना हो, जो आचरण नहीं करता हो, जो एक पारदर्शी माध्यम ना हो कृष्ण की शिक्षाओं को हम तक पहुंचाने का, और जिस जो इंद्रिय संयमी ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु नहीं स्वीकार कर सकते। तो फिर पहले परख लेना चाहिए, लेकिन जब एक बार समर्पण किया ऐसे गुरु को, ऐसे प्रमाणिक गुरु को, तो फिर बिक जाना चाहिए, अपने आप को बेच देना चाहिए, ये सही शिष्य है। और बेच देने का अर्थ क्या होता है? फिर जो गुरु कहे वैसा करना। जैसे एक बैल होता है, बैल बड़ा शक्तिशाली होता है, लेकिन वो बैल अपने मालिक के हाथों बिक जाता है, भले वो बाकियों को मारता है, दूर करता है, लेकिन मालिक जो कहता है वो करता है। मालिक कहता है खेत जोतो, वो खेत जोतता है। मालिक कहता है अब खाना खाओ, वो खाना खाता, अब कहो पानी पियो तो पानी पीता, अब चलो बाहर तो चल देता है। बिका होता है मालिक के लिए बैल। तो ऐसे एक शिष्य को होना चाहिए, कोई विरोध नहीं। तो जब गुरु कहें, जो निर्देश दे, उसको शतशः पालन करना। तो ये चीजें हमें जाननी चाहिए। और फिर जब कोई विचार प्रकट होते हैं तो पहले उन पर चिंतन मनन होना चाहिए भक्तों के बीच में। विश्वामित्र मुनि ने एक विचार प्रकट किया, तुरंत दशरथ महाराज ने विरोध कर दिया, ये ठीक नहीं। दशरथ महाराज को चिंतन मनन करना चाहिए था कि ये जो विचार वो प्रकट कर रहे हैं, पहली चीज कौन विचार प्रकट कर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। दूसरी चीज, वो किसके सामने प्रकट कर रहे हैं, राजसभा में आकर सबके सामने वो ये विचार प्रकट कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि इत्यादि सब उपस्थित हैं, उनके सामने वो विचार प्रकट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी विचार जब प्रकट किए जाते हैं तो उसकी महत्ता या महत्व कैसे बनता है, पहली चीज कौन उसे प्रकट कर रहा। आजकल का जो समय है, इस आधुनिक समय है, इसमें बहुत तेजी से विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और हर एक को स्वतंत्रता है विचार प्रकट करने की। इसीलिए कोई भी व्यक्ति विचार अपने प्रकट कर देता है, आजकल इंटरनेट इत्यादि बड़े माध्यम हैं, तो जिसके मन में आता है, जो भी चीज आती है वो लिख देता है, वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है। कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं है लेकिन कहीं से कुछ पढ़ता है, लिख देता है, ये खाने से बड़ा लाभ होता है। अब इंटरनेट लाखों लोगों तक पहुंचता है दुनिया में, तो उसमें से लोग पढ़ लेते हैं, अरे ये खाने से अच्छा होता है, वो पालन करने लगते हैं। नहीं, पहले देखना चाहिए कि ये विचार कौन प्रकट कर रहा। तो विश्वामित्र मुनि जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने विचार प्रकट किए, तो इनको सोचना चाहिए था, दशरथ महाराज को, कि ये विचार मुझे स्वीकार करने हैं या नहीं करने हैं, ये उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो भक्तों के बीच में ये एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि किस तरह से हम मन मुटाव को, हम मतभेदों को दूर कर सकते हैं। किसी के भी विचार को महत्व देना, उस पर चिंतन मनन करना, हाँ अगर विचार ठीक नहीं है तो उसको अस्वीकार भी करना। ऐसा नहीं है कि हर विचार को स्वीकार ही करना चाहिए, लेकिन पहले चिंतन मनन कर लेना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें कई शिक्षाएं हम लोगों ने ग्रहण की। आज के इस प्रवचन में कई शिक्षाएं हुई, जैसे पहला था कि हमें कोई भी कार्य आगे का चिंतन किए बिना करना नहीं चाहिए, परिणाम के बिना, कि क्या परिणाम होगा इसका। परिणाम की चर्चा कर लेंगे, परिणाम का विचार कर लेंगे, तो फिर हमेशा अच्छे कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, अगर वो इसका परिणाम जानता है तो वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन परिणाम जानते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देता है, चोरी कर लेता है, तो फिर उसको कष्ट उठना होता है। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि ने भगवान को ले जाने की बात कही, और फिर ये सब सुनने के बाद दशरथ महाराज भी तैयार हो गए, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें समझा दिया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप भेज दीजिए। तो फिर अब श्री राम चले विवाह करने, पिता की अनुमति के बिना। विवाह के समय तो अनुमति ली थी, तो जब वो चलने लगे, विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया, स्वास्थ्य वाचन इत्यादि किया और सौंप दिया उन्होंने कि ठीक है, अब आपके हाथ में है ये मेरे दो पुत्र। तो फिर तीनों चलने लगे, तो उस समय वर्णन किया है, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि बहुत सुंदर वो दृश्य था। आगे आगे विश्वामित्र मुनि, पीछे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण। बात तो केवल श्री राम की हुई थी, विश्वामित्र मुनि ने तो केवल श्री राम को कहा था, लेकिन लक्ष्मण तो छोड़ने वाले नहीं थे, तो लक्ष्मण भी पीछे पीछे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था राम और लक्ष्मण को देखकर कि मानो तीन फनों वाला सर्प चल रहा है। कैसे? क्योंकि एक कंधे पर उनके धनुष था, दूसरे कंधे पर तीर, तरकस जिसमें तीर रहते हैं, तुनीर जिसे कहते हैं, वो था, और बीच में उनका सिर। तो पीछे से ये तीनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तीन फन हैं, और बड़े आराम से इन फनों को हिलाते हुए ये सर्प आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, तो ये तीनों फिर चलने लगे, विश्वामित्र मुनि इन्हें लेकर गए। तो अब विश्वामित्र मुनि की यात्रा में कई प्रसंग आएंगे। रामचंद्र जी एक पहले असुर का वध भी करेंगे, और आगे भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। विश्वामित्र मुनि ने सबसे पहले इनको कुछ विद्याएं भी अर्पण की थी, तो इनका वर्णन अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले बार इस यात्रा का वर्णन होगा कि किस तरह से विश्वामित्र मुनि उन्हें लेकर गए, और रास्ते में बहुत से प्रसंग हुए, तो उन प्रसंगों का वर्णन, और फिर मारीच और सुबाहु। वैसे मारीच और सुबाहु को मारने में भी बड़ा सुंदर संदेश भगवान ने दिया। मारीच को छोड़ दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को दूर भगा दिया और सुबाहु को मार दिया, तो क्यों ऐसा किया, ये भी वर्णन अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। Srila Prabhupada ki.
Thank you. सबके लिए एक सूचना है, इस रविवार का जो दोपहर का कार्यक्रम होगा ये बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें प्रवचन परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज देंगे, तो आप सब इसमें भाग लीजिएगा। हरे कृष्ण।